हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 94. अंबिका ने जब दोबारा उसकी छाती को हल्के से धक्का दिया, वेदांश ने अपने हाथों में उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, कभी भी, कहीं भी। भूल जाओ अब तुम कहीं भी जाने आने के बारे में। जितना हम दोनों पर और हमारे रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बस इसके अलावा और किसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे साथ रहोगी हमेशा। इस वक्त अंबिका को वेदांश की आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अलग ही क्षेत्र में है। इसीलिए अंबिका ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। अंबिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मेरे घर वालों में से किसी को भी कुछ नहीं करोगे और अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी से बात नहीं करोगे, ना ही उनका दिल दुखाओगे। तुम्हें नहीं पता लेकिन वो रोते हुए यहाँ से गई हैं। अंबिका ने जैसे ही उसकी माँ का जिक्र किया, वेदांश एकदम उतर गया। उसने अंबिका के चेहरे से अपना हाथ हटाते हुए कहा, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी और वैसे भी तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तो ऐसे ही बिना जाने समझे कुछ भी मत कहो अभी। अंबिका ने तर्क देते हुए कहा, जानने का मौका तो दोगे नहीं तुम, तो कैसे पता चलेगा मुझे कुछ भी। खुद भी कुछ नहीं बताते हो, पता नहीं किस तरह से शामिल करना चाहते हो तुम मुझे अपनी जिंदगी में। बस ऐसे ही आधा अधूरा नाम का और दिखावे का रिश्ता, ये कभी आगे बढ़कर मुकम्मल नहीं हो पाएगा। वेदांश ने गुस्से में अंबिका को घूर कर देखते हुए कहा, ज्यादा मत बोला करो, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी इस रिश्ते को पूरा कर सकता हूँ, और वैसे भी हमारा रिश्ता अपने आप में ही पूरा है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं और अब आदत भी बन चुके हैं। आगे आकर उसने तुरंत ही अंबिका को अपनी गोद में उठा लिया और बेड तक ले गया। उसने अंबिका को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए धीरे से उसकी साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटाने लगा। अंबिका को एकदम से शर्म आ गई। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए हाथों की मुट्ठियों से कसकर बिस्तर की चादर पकड़ ली। वेदांश ने धीरे से अपना हाथ अंबिका की खुली हुई कमर पर रखा और उंगलियों से हरकत करते हुए उसकी नाभि की तरफ बढ़ने लगा। अंबिका को अपने पूरे शरीर पर चींटियां रेंगती हुई महसूस हुई। उसकी पकड़ चादर पर और मजबूत हो गई, लेकिन दूसरा हाथ उठाकर उसने वेदांश के बालों में डाल दिया और वेदांश के चेहरे को अपने करीब करते हुए अंबिका के मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकल गई, आह, जो कि वेदांश को उत्तेजित करने के लिए काफी थी क्योंकि पहले ही उसका मूड काफी अच्छा बन चुका था और वो अभी अंबिका को नहीं छोड़ने वाला था। अंबिका भी शायद अभी उससे दूर जाना नहीं चाहती थी। वेदांश उसके और करीब आता जा रहा था, उन दोनों के बीच का फासला कम होता जा रहा था और तभी वेदांश पूरी तरह उसके नज़दीक और अंबिका के एकदम ऊपर आ गया। 88. वेदांश पूरी तरह से अंबिका के ऊपर आ चुका था। उसने अंबिका के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अंबिका का चेहरा ना चाहते हुए भी शर्म से लाल हो रहा था। ये देखकर ही समझ आ रहा था कि वो वेदांश को अपने इतने करीब देखकर क्या महसूस कर रही थी। वेदांश उसके काफी ज्यादा नज़दीक आ चुका था। उसने अंबिका की नाभि को छूते हुए उसके पूरे पेट को अपने हाथों से इस तरह छुआ जैसे मानो वो उसके पूरे शरीर का भ्रमण कर रहा हो। अंबिका ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका, बल्कि वो वेदांश के हाथों की गर्माहट को महसूस करके मुस्कुरा रही थी। और तभी वेदांश धीरे धीरे अंबिका की गर्दन पर किस करने लगा। जैसे ही वेदांश के होंठ अंबिका की गर्दन पर टचे, अंबिका ने अपने हाथ वेदांश के कंधे पर रख दिए। वो अंबिका की गर्दन को चूमता हुआ उसकी क्लीवेज पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने अंबिका के क्लीवेज को चूमा, अंबिका की सांस मानो अटक गई हो। वो वेदांश के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम वेदांश? वेदांश ने अंबिका की आंखों में आंखें डालकर देखा और वो एक पल के लिए रुका। उसने जब अंबिका को किस करना बंद किया तो अंबिका की सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। वो अंबिका के बिल्कुल नज़दीक आकर अपनी भारी आवाज़ में बोला, क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बस वही कर रहा हूँ जो उस दिन हमारी शादी की रात अधूरा रह गया था। अंबिका वेदांश की ये बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखती जा रही थी और तभी वेदांश का हाथ अंबिका के गालों पर आया। उसने उसके गाल को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम अभी भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो लेकिन कोई फायदा नहीं, मैं अब नहीं रोकने वाला क्योंकि तुम्हारे पास अब मुझे रोकने का कोई बहाना नहीं है। मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है। वेद, आह! अंबिका के इतना बोलते ही वेदांश के हाथ अंबिका के हाथों को छूते हुए उसके कंधे तक चले गए। उसने अंबिका के कंधे के पास आकर उसके ब्लाउज का स्ट्रैप नीचे गिरा दिया। अंबिका ने जैसे ही वेदांश को ऐसे करते हुए देखा, अंबिका की सांसें और भी ज्यादा तेज हो गईं। वेदांश उसके कंधे पर सेक्सी अंदाज में किस करते हुए बोला, अब तो तुम मेरी पत्नी हो और मेरे पास ये सब कुछ करने का हक भी है, तो फिर अब तो तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी, है ना, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो। अंबिका वेदांश की बात चुपचाप सुन रही थी। वो जानती थी कि अब वो वेदांश को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वेदांश उस पर पूरा हक जता रहा था। अंबिका ने जब कुछ नहीं कहा तो वेदांश के हाथ अंबिका के हाथ से होते हुए उसकी पीठ पर गए और उसने अंबिका के ब्लाउज की डोरी खोल दी। अंबिका ने जैसे ही उसके ठंडे हाथ को अपनी पीठ पर महसूस किया, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वेदांश अंबिका के करीब आकर उसके होठों के करीब आने की कोशिश की और तभी अंबिका ने करवट ली और वो दूसरी तरफ घूम गई, जिस वजह से अंबिका की सेक्सी पीठ वेदांश की आंखों के सामने आ गई थी। वेदांश उसके पीठ के बिल्कुल नज़दीक गया और उसने अंबिका के ब्लाउज में लगी डोरी को पूरी तरह से खोल दिया। अंबिका का ब्लाउज काफी ज्यादा डीप नेक का था। अंबिका की पूरी पीठ बिल्कुल साफ नजर आने लगी। वेदांश उसकी पीठ को छूते हुए उसके बिल्कुल नजदीक गया और उसने अंबिका की पीठ पर अपने होंठ रख दिए। अंबिका ने उसके होठों को जैसे ही अपनी पीठ पर महसूस किया, अंबिका के मुंह से एक तेज सिसकी निकली और उसने धीमी आवाज में कहा, वेदांश। वेदांश ने जैसे ही उसकी सिसकारियां सुनी, वो उसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लगा। वो धीरे धीरे उसकी पूरी पीठ पर किस करता चला गया और तभी वेदांश ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और वो धीरे धीरे अंबिका के ब्लाउज की डोरी खोलने लगा। टू बी कंटिन्यूड। क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइए। आज के एपिसोड में क्या था आपका पसंदीदा दृश्य और कौन है अब तक आपका पसंदीदा पात्र और पसंदीदा जोड़ा, बताइए कमेंट में। रोज़ के एपिसोड में से ही अपना पसंदीदा हिस्सा या संवाद तो ज़रूर बताइए और कहानी में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, और आप लोगों को क्या देखना है, ये सब आप लोग कॉमेंट में लिखा करिए और कहानी को रेटिंग और समीक्षा ज़रूर करिए। साथ में हमें फॉलो भी कर लीजिए। ये कहानी हम ऐसे ही खामोशी से तो जारी नहीं रखेंगे। हमें हमेशा की तरह बात करने वाले लोग चाहिए जो कहानी में पूरा उत्साह लें, तभी इस कहानी के जल्दी जल्दी ज्यादा और बड़े भाग मिलेंगे आप लोगों को। क्योंकि जब कोई भी कमेंट नहीं करता है, सिर्फ पढ़कर चले जाते हैं, तो फिर मेरा भी अगला भाग लिखने का मन नहीं होता। पूपू ऐसे मौन पाठकों को जिनकी कोई आवाज नहीं है कहानी को लेकर, भाई फू।